नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेंगे। भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डाटा और डाटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ समिति में शामिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आज देहरादून में होगा। और भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत युवा नेता संवाद देश के युवाओं को राष्ट्र के विकास यात्रा में शामिल करने की अनूठी पहल है। श्री मोदी ने युवा खेल मामलों की राज्य मंत्री रक्षा खडसे का राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 और विकसित भारत युवा नेता संवाद पर लिखा एक लेख साझा करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए युवाओं में ऊर्जा, रचनात्मकता और नेतृत्व को दिशा प्रदान करना है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नई दिल्ली में भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी देश भर के 3000 युवा नेताओं के साथ संवाद भी करेंगे।
देश भर से 3000 युवा नेताओं का चयन विकसित भारत चैलेंज के माध्यम से किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान युवा नेता प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण पर अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रधानमंत्री युवा नेताओं के साथ दोपहर के भोजन में शामिल होंगे, जिस दौरान उन्हें अपने विचारों, अनुभवों और आकांक्षाओं को सीधे प्रधानमंत्री के साथ साझा करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी प्रतिभागियों द्वारा 10 विषयों पर लिखे गए सर्वश्रेष्ठ निबंधों का संकलन भी जारी करेंगे। इनमें प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, विनिर्माण और कृषि जैसे विषयों पर निबंध शामिल है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग युवा नेताओं को देश के भविष्य को लेकर अपने विचारों को साझा करने के लिए नीति निर्माताओं, राष्ट्रीय और वैश्विक हस्तियों के साथ सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए आज से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को उनके कौशल, ज्ञान और समग्र विकास को बढ़ाने के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। एक रिपोर्ट।
स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का आदर्श वाक्य संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस मिशन को प्रधानमंत्री के ज्ञान पर ध्यान और मध्य प्रदेश की युवा नीति के अनुरूप आकार दिया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के मुख्य स्तंभ संवाद, शिक्षा, क्षमता संवर्धन, उद्यमिता और रोजगार, सामाजिक पहल और निगरानी है। यह मिशन शहरी तथा ग्रामीण, पिछड़े और आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के कल्याण के लिए है। इसमें महिलाओं, दिव्यांग युवाओं और किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डाटा और डाटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। भारत अब आधिकारिक सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए बिग डाटा और डाटा साइंस का उपयोग करने में वैश्विक मानकों और प्रथाओं को स्वरूप देने में अपना योगदान देगा। एक रिपोर्ट।
सांख्यिकी मंत्रालय ने कहा है कि विशेषज्ञों की समिति में भारत का शामिल होना देश के सांख्यिकी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों की समिति में देश की सक्रिय भागीदारी, डेटा इनोवेशन लैब की स्थापना और वैकल्पिक डेटा की खोज सहित इसकी अग्रणी पहलों को उजागर करेगी। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की ये समिति बिग डेटा के लाभ और चुनौतियों की जाँच के लिए बनाई गयी थी, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों पर निगरानी और रिपोर्टिंग की क्षमता शामिल है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पूर्व विधायक कपिल मिश्रा को करावल नगर से, हरीश खुराना को मोतीनगर से और हाल ही में आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए प्रियंका गौतम को कोंडली से टिकट दिया गया है। कुल 70 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने अब तक 58 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दिल्ली चुनाव आयोग आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगों को मतदान के दिन घर से मतदान केंद्र तक पिक एंड ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध कराएगी। चुनाव आयोग ने इस पहल को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने संसद संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी मुंबई, ठाणे, पुणे और नागपुर के नगर निगम सहित स्थानीय निकाय चुनाव अकेले ही लड़ेगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी को अपनी ताकत का आकलन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इन क्षेत्रों में बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय लिया गया है कि पार्टी को संगठन मजबूत करने के उद्देश्य से नगर निगमों, जिला परिषदों और नगर पंचायतों में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी शिखर सम्मेलन आज देहरादून में आयोजित किया जाएगा। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 देशों के 60 से अधिक प्रवासी उत्तराखंडियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है।
उत्तराखंड में पहली बार हो रहे इस सम्मेलन का उद्देश्य विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाकर राज्य के विकास को गति देना है। सम्मेलन के दौरान निवेश, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार, उच्च शिक्षा और जड़ी बूटियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश दौरों के दौरान प्रवासी उत्तराखंडियों से मुलाकात के बाद इस सम्मेलन की परिकल्पना की थी। इस सम्मेलन से उत्तराखंड में निवेश और विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है, जिससे पर्यटन, शिक्षा, रोजगार और कृषि क्षेत्रों को मजबूती प्रदान की जा सकेगी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पीडएक्स करने के लिए प्रक्षेपित किए गए दो उपग्रह एक रोमांचक दौर में पहुंच गए हैं। दोनों उपग्रहों के बीच की दूरी केवल 15 मीटर रह गई है। इसरो की एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार STX-01 चेजर और STX-02 टारगेट के बीच सिर्फ 50 फीट की दूरी है। 30 दिसंबर को प्रक्षेपित स्पेडेक्स मिशन का उद्देश्य छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रदर्शन करना है। स्पेडेक्स के सफल प्रदर्शन से भारत जटिल तकनीकों में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। पुडुचेरी में स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है कि हाल ही में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए एक बच्चे में ह्यूमन मेटानिमोवायरस HMPV का संक्रमण पाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की एक विज्ञप्ति के अनुसार इस बच्चे को पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बच्चे के माता पिता को एहतियाती मार्गदर्शन प्रदान किया है और लोगों को आश्वस्त किया है कि स्थिति नियंत्रण में है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे टीबी मुक्त भारत विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की उप महानिदेशक DDG टीबी प्रोफेसर उर्वशी बी सिंह हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आमंत्रित विशेषज्ञ से कार्यक्रम के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रयागराज में कल पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ महाकुंभ आरंभ होगा। इस भव्य आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रयागराज में विभिन्न स्थानों पर घने जंगल विकसित किए गए हैं ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध हवा और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में जापानी मियावाकी तकनीक का उपयोग करके कई ऑक्सीजन बैंक स्थापित किए गए थे, जो अब हरे भरे वन में बदल गए हैं। इन प्रयासों से प्रयागराज में न केवल हरियाली बढ़ी है बल्कि वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। पिछले 2 वर्षों में शहर में 10 से अधिक स्थानों पर 55,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में पेड़ लगाए गए हैं। सबसे बड़ा वृक्षारोपण नैनी औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है, जिसमें 63 प्रजातियों के लगभग 1,20,000 पेड़ हैं, जबकि शहर के सबसे बड़े कूड़ा डंपिंग यार्ड की सफाई के बाद बसवार में 27,000 पेड़ लगाए गए हैं। यह परियोजना न केवल औद्योगिक कचरे से छुटकारा पाने में मदद कर रही है बल्कि धूल, गंदगी और दुर्गंध को भी कम कर रही है। ये जंगल जैव विविधता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
BCCI ने इंग्लैंड के साथ आगामी 5 मैचों की 2020 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान होंगे। अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया है। मोहम्मद शमी की 1 साल से अधिक समय के बाद टीम में वापसी हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच 22 जनवरी को कोलकाता में खेला जाएगा। महिला क्रिकेट में भारत और आयरलैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुजरात के राजकोट में खेला जाएगा। मैच सुबह 11 बजे शुरू होगा। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में कल दो मुकाबले खेले गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में शनिवार को खेले गए पहले मैच में मुकाबला था हैदराबाद तूफान्स और सुरमा हॉकी क्लब के बीच। निर्धारित समय तक एक एक के बराबरी पर रहने के बाद मुकाबला पेनल्टी शूट आउट में पहुंचा। वहां भी स्कोर लाइन 3-3 की बराबरी पर। सडन डेथ में हैदराबाद के गोलरक्षक डोमिनिक डिक्सन ने शानदार बचाव कर अपनी टीम की जीत 4-3 से सुनिश्चित कर दी।
हैदराबाद तूफान दूसरी बार शूट आउट में जीते हैं।
प्लेयर ऑफ द मैच रहे अमनदीप लाखड़ा। दूसरे मैच में यूपी रुद्रास ने एक गोल से पिछड़ने के बाद दिल्ली एसजी पाइपर्स को 3-1 से पराजित करने में कामयाबी हासिल की। आज से रांची में हॉकी इंडिया महिला लीग के पहले संस्करण की शुरुआत हो रही है। इस संस्करण के पहले मुकाबले में दिल्ली एसजी पाइपर्स रात्रि 8:40 पर ओडिशा वॉरियर्स का मुकाबला करेगी। उधर राउरकेला में शाम 6 बजे हैदराबाद तूफान्स और कलिंगा लांसर्स अपनी अपनी चुनौती रखेंगे पुरुष वर्ग में। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं आशीष चरंगो।
इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में आज मुंबई में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और मुंबई सिटी के बीच मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ स्थानों पर रात और सुबह के समय कोहरा छाया रहा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल में घना कोहरा छाया रहा। विभाग ने आज तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज के साथ तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन में उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद लोलीन। गृहमंत्री अमित शाह का बयान, डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी देश के लिए चुनौती, राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है। पत्र लिखता है, मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि सरकार ने न केवल मादक पदार्थों के कई नेटवर्क को खत्म करने में सफलता पाई बल्कि उनसे जुड़े आतंकवाद को भी नष्ट किया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरा होने पर अमर उजाला ने सुर्खी बनाई है, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रामलला का पंचामृत से अभिषेक। पत्र के अनुसार अयोध्या में जिस मुहूर्त में बालक राम की हुई थी प्राण प्रतिष्ठा उसी शुभ घड़ी में महाआरती। देश में 52% हिस्से में भूजल बढ़ा, दोहन में कमी, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणाम अब जमीन पर दिखने लगे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस पर लगभग सभी अखबारों ने विशेष आलेख दिए हैं। देशबंधु की खास खबर है, देश की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर आपात लैंडिंग के लिए तैयारी पूरी। पत्र के अनुसार लद्दाख के न्योमा में अगस्त तक उतरेंगे सभी लड़ाकू विमान। कल से शुरू हो रहे महाकुंभ पर दैनिक भास्कर कहता है, 45 दिन तक रोज लाखों मंत्र, जाप और आहुतियां होंगी। पत्र के अनुसार हजारों साधु संतों और सिद्ध योगियों के तप से अलौकिक होगा गंगा यमुना सरस्वती का संगम। राष्ट्रीय राजधानी में कल हुई बारिश पर नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, घने कोहरे के साथ हुई सुबह, दोपहर से रात तक बारिश। हिंदुस्तान कहता है, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बदला मौसम, आज कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी। पत्र के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी से कांपा उत्तर भारत।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वैश्विक परिदृश्य में भारत के युवाओं के बढ़ते महत्व पर बल दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ब्रिटेन की यात्रा के दौरान कल लंदन में एक कार्यक्रम में भारतीय छात्रों को संबोधित कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेंगे। भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डाटा और डाटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ समिति में शामिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आज से देहरादून में होगा। और भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।